मन को थामे सो बड़ा बैरागी, मन को जीते सो ही अनुरागी। हम सब जानते हैं कि मन के अंदर इच्छा उठती है संसारी सुख प्राप्ति के लिए, और उस सुख प्राप्ति का प्रयास हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं। देह हमारी ऐसी मशीन है जिसमें इंद्रियां फिट हैं, और मन में जैसी भी इच्छा उठती है इस देह के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। करें मन को थामे सो बड़ा बैरागी, लेकिन हमारी जो बुद्धि का निश्चय है, जो सांसारिक निश्चय है, वो ये है कि जितना ज्यादा पुरुषार्थ मैं संसार में कर लूंगा उतना खुद सुखी हो जाऊंगा, अपने परिवार को सुखी कर दूंगा, अपने देश को सुखी कर दूंगा। ये बुद्धि का आम निश्चय। तो जो व्यक्ति इस मन को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, अर्थात उसकी बुद्धि में यह निश्चय हो चुका है या विवेक आ चुका है कि बाहर की जो दौड़ है ये निरंतर बढ़ती रहती है। आपका एक निश्चित गोल हो, निश्चित कोई डिजायर हो, पुरुषार्थ करके पूरी कर भी लो आप, लेकिन वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये ऐसा पेड़ है जिसकी नई नई जड़ें फैलती रहती हैं, नए नए कल्ले फूटते रहते हैं और ये पेड़ की विशालता बढ़ती रहती है। इसीलिए सारी की सारी जो कोशिश है मनुष्य की इस प्रगति के करने के बाद भी उसकी बेचैनी को बढ़ा देती। सतमुच इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला था मन को अंदर रोकने के लिए, अर्थात मन की अंदर गति मैंने करनी थी और मेरा मन बहिर्गति की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है। बाहर की जितनी भी दौड़ है, जैसा अभी हम उदाहरण सुन रहे थे सिकंदर जिसने सारी दुनिया पर राज किया, लेकिन अंत में उसको होश आई कि मैं तो कुछ साथ ले ही नहीं जा सकता, इसलिए लोक शिक्षा के लिए उसने कह दिया कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मैं खाली हाथ संसार से जा रहा हूं। तो जीवन के अंत में होश आ भी गया तो उसका फायदा क्या, क्या मिला? क्योंकि अगला जन्म जब मिलेगा, जो कुछ भी कर्म किए हैं उसका फल जो बच गया है भोगने से, या जो स्वभाव आपने बना लिया है वो सारा का सारा आपकी मन बुद्धि में सुरक्षित रहेगा, तो अगला जन्म तो उसके अनुसार होना है। इसीलिए अंत के वक्त होश आ भी गया तो किस काम, जब आयु बाकी बची हुई है कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं, होश तो उस समय आना चाहिए। तो मनुष्य जन्म मिला था बेराग होने के लिए, अर्थात इंद्रियों के भोगों से मैं उपरस कैसे हूं, इसको कम से कम मैं कैसे भोगूं, उल्टी दिशा में मनुष्य जन्म लेकर प्रोग्रेस करनी थी। उसके बारे में बुद्धि में निश्चय ही कोई नहीं तो मैं ये उल्टा काम क्यों करने लगा। इसीलिए मानव जन्म लेकर जब पूर्ण गुरु का आश्रय लिया जाता है, उसके ज्ञान को सीखा जाता है और अंदर एक बुद्धि के निश्चय होता है कि सत्पुरुष का ज्ञान यदि मैंने सीख लिया तो मानव जन्म लेकर मुझे कुछ ना कुछ तो ठंडक मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो प्रगति हो ही जाएगी। और इतना ही नहीं होता, जब गुरु का आश्रय लेता है, शास्त्र का आश्रय लेता है, उसको ये भी पता होता है कि मेरी मौत फाइनल मौत नहीं है, फिर दूसरा शरीर खड़ा हो जाएगा और यही मन बुद्धि मेरी उस नई देह में काम करेगी। तो जब मैं अपने मन की डिजायर को पूरी करने के लिए शरीर का उपयोग करता हूं, इंद्रियों का उपयोग करता हूं और शरीर यहां नष्ट हो जाता है, लेकिन वो मन इंद्रिया जो है नया शरीर तैयार कर लेती है, क्योंकि उसके संस्कार तो बुद्धि में रहते हैं ना सारे सारे। जो स्वभाव जो आप संस्कार लेके गए यहां से उसके अनुसार आपका नई देह तैयार हो जाती है। मानव देह भी तैयार हो सकती है, पशु देह भी तैयार हो सकती है, ये निर्भर करता है तुमने कैसा जीवन व्यतीत किया। तो मानव जन्म लेकर मैं अपने ही विज्ञान को सीखने की कोशिश भी ना करूं और केवल सबकी नकल करके मैं जीता रहूं तो आप क्या करोगे? जो स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ रहा है और यही सोच ले कि मैं नकल करके पास हो जाऊंगा तो आप क्या करोगे? इसकी बुद्धि जो है भ्रमित है। पास तो वो होता है जो आपका पुरुषार्थ करता है सही डायरेक्शन। तो मैं जो संसार की नकल करके संसारी तरीके से जीता हूं तो मैं उसी के समान हूं जैसे कोई नकल करके हमेशा पास होना चाहे, तो क्या जिंदगी उसकी क्या ठीक चलेगी? सुनिए, मैंने संसार की नकल नहीं करनी होती है, मैंने गुरु का ज्ञान सीखना होता है, या यूं कह लिए कि अध्यात्म विद्या सीखनी होती है। तो वो विद्या मेरी है, मेरी मन बुद्धि की विद्या है, तो उसमें मैंने मेहनत करनी ही थी, चाहे मेरे माता पिता मेरे भाई बंधु भी उसमें मेरी मदद ना करें, लेकिन मैंने सीखनी थी क्योंकि जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही, पुनर्जन्म मेरा बर्बाद हो। तो सिकंदर को तो मौत के वक्त होश आया, मुझे तो जवानी में ही होश आ जाना चाहिए, जवानी निकल भी गई फिर तो होश में आ जाऊं, तो बड़ा हो गया मैं, सीख सकता हूं, बुद्धि मेरी विकसित हो गई है, तभी मैं उस ज्ञान को सीखने की कोशिश की। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रभु ने कृपा की, इस आश्रम में कैंप लगने शुरू हो गए, एक कोर्स करके 10 सब्जेक्ट का ये अध्यात्म विद्या सिखाई जाती है, जिसमें स्त्री और पुरुष सभी सीख लेते हैं और उनका अपना अनुभव कहता है जिस समय सीख कर निकलते हैं उनके मन के अंदर एक असीम एक प्रसन्नता होती है, जैसे जीवन की बड़ी चीज हम यहां से लेकर जाते हैं, शायद दुनिया में हमको कभी भी नहीं मिलती। काहे की प्रसन्नता है? अभी तो कुछ किया नहीं आपने, केवल सीखा है। विचार करो, जो सीखा उसकी खुशी है, यदि वही मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, उसको अमल में ले आया तो कितनी बड़ी खुशी हो। विचार करने की बात, जिस ज्ञान को सीखने में इतनी खुशी हो रही है उसको जीवन में अमल में लाने पर कितनी खुशी होगी, और वो परमानेंट खुशी होगी। क्यों परमानेंट होगी? क्योंकि इस देह की मौत हो भी गई तो फिर मुझको नई देह मिलेगी, ये ज्ञान मेरी बुद्धि में स्थित होगा, सर कि संस्कार रूप में आपकी बुद्धि में सब चीज सुरक्षित रहती। दुनिया चले ना चले, लेकिन मैंने जो सीखा है मैंने उसके अनुसार चलना जरूर है, ये निश्चय मेरा होना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि मन को थामे सो बड़ा बैरागी, मन को जीते सो ही अनुरागी। काहे का अनुराग है, काहे का प्रेम है? ये प्रभु का प्रेम, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु है और बाहर संसार है। संसार का आप कितना भी विकास कर लीजिए, यहां राक्षस पैदा होते रहते हैं, राक्षसी राज्य भी चलते रहते हैं, राक्षसी स्वभाव भी चलते रहते हैं। संसार जैसा था हमेशा से वैसा ही आज भी, इसमें कभी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि इसका विज्ञान ही यह है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों का यह संसार है और तीनों गुण ईश्वर से प्रकट हुए हैं। इसको कहते हैं वो ये मेरी माया। इसका तो ईश्वर की माया क्यों है? क्योंकि ईश्वर की माया में जो लक्ष्य बनाएगा उसके लिए जो जिएगा वो दुखी होगा ही होगा, बेचैन होगा ही होगा। प्रभु ने विधान ही अपना ऐसा बनाया है कि मानव जन्म यदि आपको दिया है तो आपको ईश्वर की तरफ जाना ही चाहिए, और ईश्वर की तरफ जाने का मतलब होता है यदि आप तमोगुणी हो पापी हो तो उससे ऊंचा हो तो रजोगुणी, रजोगुण का मतलब मेहनत करके कमाओ, बेईमानी करके मत कमाओ। और यदि आगे बढ़ना है तो सतोगुणी बनो, जो मेहनत से कमाया है उस पर किसी का दुख दिखाई पड़ना चाहिए आपको, उसका दुख दूर करने की कोशिश करना चाहिए, प्रभु की याद करनी चाहिए, प्रभु का विज्ञान सीखना चाहिए। एजुकेशन तो मैंने ये सीखनी थी, प्रभु के विज्ञान, मन इंद्रिय बुद्धि का विज्ञान, पुनर्जन्म का विज्ञान, स्वभाव का विज्ञान, कर्म फल का विज्ञान, निष्काम कर्म का विज्ञान, मैंने सारी ये बातें सीखनी थी, तो दुनिया की किसी किताब में पढ़ाई नहीं आती। तो सतो गुण का जो रास्ता है वो इस विज्ञान को सीख कर इसके अनुसार अपने बुद्धि के निश्चय को बदलना और फिर सही निश्चय के अनुसार संसार में पुरुषार्थ करना। अब बताइए, जो अध्यात्म का पुरुषार्थ है वो आंतरिक है, संसार के कर्म पर डिपेंड नहीं करता है। प्रभु अंदर है, जीव अंदर है, बुद्धि अंदर है, मन अंदर है, कौन आपको रोक रहा है ईश्वर के पास जाने से? इसीलिए कह रहे हैं कि मन को जीते सो ही अनुरागी। जो ये ज्ञान सीख लेता है कि मन को इंद्रियों की तरफ प्रेरित करना, अर्थात मन में संसार भोग की कामना पैदा करना, फिर उसको इंद्रियों के द्वारा पूरी करने की कोशिश करना, ये बहिर्गति जो मन की है ये मनुष्य को अनुरागी नहीं बना सकती, ये मनुष्य के मन को चंचल बना देते हैं। अनुरागी क्या होता है? अंतर्यामी जो प्रभु है यही मन उस प्रभु का अनुभव करता है। जब प्रभु का अंदर अनुभव करता है तब ये प्रभु का अनुरागी हो जाता है, प्रभु का प्रेमी हो जाता है, तब इसको पता लगता है कि संसार में कितनी बेचैनी है। कैसे बेचारे अज्ञानता में लोग जो है फंसे पड़े हुए, वो जानता है सादा तो वो हो गया, भोग विलास भी उसने कम कर दिए, लेकिन उन लोगों से कई गुना ज्यादा वो शांत है, उसकी बेचैनी उन लोगों से कई गुना कम है। तो हम संसार के भोग के अनुरागी हैं, लेकिन वो प्रभु का अनुरागी हो जाता है। जो संग उसका मौत के वक्त भी छूटता नहीं है वो बना रहता है, क्योंकि प्रभु की मौत नहीं, जीव की भी मौत नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि मन को जीते सो तत् परगासी, निज घर जाए मिले अब नासी। जो मन को जीत लेता है, मन का जीते का मतलब जिसने मन को संयम में जो ले आए, देह की जरूरत तो पूरी करता है लेकिन मन के शौक पूरे नहीं करता, तो मिलता क्या है? मिलता एक ही है उसको कि प्रभु की बड़ी प्रेम से वो याद कर सकता है, और प्रभु की प्रेम से जो याद करने में सफल होता है वही जानता है कि मन में वो चैन कैसे घुल जाता है। संसार का जहर, बेचैनी का जहर, दूसरों को दुख देने का जहर, स्वार्थी होने का जहर, ये सारे घुल जाते हैं, और प्रभु उनका प्रेम, उनका रस, उनकी शांति ये इस मन को, इस जीव को मिल जाती है। तो अंत में क्या कहते हैं? निज घर जाए मिले अब नासी। इसीलिए जो व्यक्ति अंदर मन को ले जाने की कोशिश करता है, बाहर इंद्रियों की तरफ ले जाने से वो विवेक के द्वारा बचता है, तो इस देह के अंदर उस आत्म तत्व का, उस चेतन सत्ता का प्रकाश हो जाता है, और निज घर में जिसको दसवां द्वार कहते हैं वहां ये मन उसका पहुंच जाता है, अर्थात उसकी जो सूरत है उसको बुद्धि कहते हैं, वो उस द्वार में पहुंच जाती है जहां प्रभु का निज निवास स्थान है, निज सिंहासन, जहां केवल आनंद है, संसार की लेश मात्र भी ना भाग चिंता है ना पैसे का। अब बताइए, यदि मैंने मन को अंदर ले जाने वाली विद्या सीखी होती तो बाहर संसार में मैं क्यों भटकता रहता? सारा संसार भटक, विचार दृष्टि से आप खुली आंख से देख कर देख, आपका निश्चय बदल जाएगा इस संसार में सुख। विचार की आंख से जब देखोगे तो ये भेद खुल जाएगा कि सुख और शांति तो अंदर है, बाहर तो बेचैनी है, दौड़ी दौड़ है, सारी जिंदगी दौड़ लगाते लगाते हाथ पैर मेरे बेकार हो जाते हैं, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शांति मुझको नसीब नहीं होती। वो तभी हो सकती है या उसी को हो सकती है जो पूर्ण गुरु का आश्रय ले, या शास्त्र का आश्रय ले, या ऐसी संगत का आश्रय ले जहां
बुद्धि का निश्चय इस प्रकार का हो और ईश्वर की तरफ चलने वाले लोग। आगे कहते हैं, प्रभु मिलने का मार्ग यही मन को ठाके शब्द सने। प्रभु से मिलन का यही मार्ग है, क्या कि बुद्धि को हम ट्रेनिंग दें, बुद्धि के निश्चय को शास्त्र के अनुसार बदलें और मन को बाहर दौड़ाने के बजाय अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करें, जो सिमरन के माध्यम से आप करते हैं। लेकिन शिकायत इतनी रहती है क्योंकि संसार की चिंता फिक्र आपको नहीं छोड़ती, और जब तक चिंता फिक्र आपकी कम ना हो तो सिमरन में सफलता मिलेगी कैसे आपको। तो जो शास्त्र का विज्ञान है वो बड़ा ही एक्यूरेट है और बड़ा ही सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कहीं कुछ भी लिख दिया। लेकिन क्योंकि मैं स्वाध्याय करता नहीं, संसार की पुस्तकों का स्वाध्याय तो मैं नंबर ज्यादा लाने के लिए बड़े ढंग से कर लेता हूं, कोचिंग भी कर लेता हूं, लेकिन जिसमें मेरे जीवन की सफलता है उसका तो स्वाध्याय करने की जरूरत तक नहीं समझता। सत्संग सुन लिया, हाँ सुन लेता हूँ सत्संग, बस हो गई बात। ये विज्ञान है, साइंस है, मेरे अंदर की साइंस है और पूरी सृष्टि की साइंस है। आपने अपनी देह का विज्ञान सीख लिया, याद रखिए देह और संसार एक चीज है महाराज कह रहे हैं, देह करके संसार। तो पूरी सृष्टि का विज्ञान आपने सीख लिया यदि अपनी देह का विज्ञान सीख लिया। तो बताइए कि मैं अपनी अपनी ही देह, मेरी देह है, इसका विज्ञान सीखने की मेरे अंदर इच्छा ही नहीं। हाँ भाई महाजी ने कहा है सिमरन करना चाहिए, मैं कर लेता हूं, क्या बात है। संसार में जब एग्जाम देते हो, क्लास पास करते हो, तो आपका लक्ष्य लेके चलते हो, ये रिजल्ट मुझको चाहिए। लेकिन अध्यात्म में कैसे भी कर लेते, तो चलने में ही जब हमारी इतनी लापरवाही है, बुद्धि के निश्चय में ही जब इतनी खोट है, तो आपको प्राप्त क्या होगा। इसलिए सारी जिंदगी कंप्लीट करते हैं तो सिमरन करने बैठता हूं मैं और मन नहीं लगता। देखिए वाणी क्या कह रही है, छिन्न छिन्न प्रभु की आज्ञा माने, करन करावन हार पछाने। अब सिमरन का राज है इसके अंदर कि हर क्षण प्रभु की आज्ञा माने। क्यों माने आज्ञा, क्योंकि मानव देह और इवन पशु पक्षियों की भी देह प्रारब्ध के अधीन है। मन बुद्धि के लेवल पर तू स्वतंत्र है, देह के लेवल पर तू पराधीन। इसीलिए वो कहते हैं छिन छिन प्रभु की आज्ञा माने, करण करावन हार पछाने। तेरे भाग में जो संसार की सुख रूपी कंडीशन है, दुख रूपी कंडीशन है, वो आएंगी और जाएंगी। कौन तेरा दुश्मन बनेगा, कौन तेरा मित्र बनेगा, देखने में तो ऐसा लगता है मैंने बनाया, लेकिन सत्य यह है कि वो मुझको मिला। ये तो इतनी बड़ी महाभारत हो गई, अर्जुन को कृष्ण यही तो समझा रहे हैं। सारे इतने जो राजा इकट्ठे हुए हैं, ये मरने के लिए इकट्ठे हुए, इनका वक्त आ गया, प्रारंभ के कारण इनका वक्त आ गया। अब कोई होशियारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी, वो घटनाक्रम घटकर रहेगा, इसमें तू भी शामिल। इसीलिए ज्ञान दृष्टि से देख ये सारा सीन घट चुका है, फिर भी अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण के पास तो पावर है, उन्होंने कहा मेरे मैं मुंह खोलता हूं तो जो देखना चाहता है वो देख ले। अर्जुन ने जो देखना इच्छा थी सब देख लिया, उसका बुद्धि का निश्चय हो गया कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, जो घटनाक्रम निश्चित हो चुका है प्रकृति में वो घटकर ही रहेगा। इसीलिए करें करण करावन हार पछाने। तो अध्यात्म विद्या मैंने इसी प्रकार यदि सीखी होती जैसा कि निर्णय अध्यात्म विद्या कर रही है, तो तू करण करावन वाला ईश्वर को समझता, सारी प्रकृति चक्र ईश्वर के हुक्म में चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं। अरे तेरा विकास अंतर्गत था, तू बाहर विकास कर रहा। मनुष्य का विकास यह है कि वो ज्ञान हासिल करे, वो क्रिया करे कि मन निरंतर अंदर की ओर जाने की कोशिश करे, अर्थात मन को अंदर का सुख प्रतीत हो, बाहर का सुख को दुख रूप देखने लगे। मन की ट्रेन तो नहीं कर सकते आप, कौन ट्रेन होगा? बुद्धि ट्रेन होगी। मन किसका है? मेरा ही तो मन है, बुद्धि का ही तो मन है, यानी जीव का ही तो मन है। जब मेरा मन है तो मैं जैसे चाहूं उसको बना सकता हूं। उसके लिए जो सिमरन करना चाहता है, अंतर्यामी प्रभु की खोज करना चाहता है, जीवन में शांति चाहता है, तो उसको यह सिद्धांत सीखना ही पड़ता है कि संसार चक्र जन्म लेते ही मेरे लिए फिक्स हो जाता है। तो सारी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी जो प्रारंभ में है। अब बताइए, आपने दुनिया से सीख तो लिया, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना सुखी हो जाओगे, लेकिन आप तो प्रारंभ से बंधे हो। जीवन में आपके सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पर मजबूरी का जीवन जीते रहोगे और कहते रहोगे उसकी गलती से हो गया, इसकी गलती से हो गया। सत्य का आपको पता ही। तो बाहर का जो संसार है आपके, याद रखिए उसका कर्ता ईश्वर है, चाहे आप मानो या चाहे ना मानो। इसलिए सिमरन करने जब आप बैठते हो और इस सिद्धांत पर आपका जब विश्वास होता है, तब आप चैन से सिमरन करने में सफल हो जाते हो। तो चित्ता फिक्र लगी नहीं, मैं बैठ तो गया हूं, पता नहीं नुकसान ना हो जाए, पता नहीं बच्चे के चोट ना लग जाए। तो आपका मन जो है बाहरी भागता है, तो अंदर सिमरन कैसे हो? इसीलिए ये आध्यात्मिक विद्या सीखनी ही पड़ती है, तभी हमको सिमरन में सफलता मिल सकती है। नहीं तो अज्ञानी बनकर सिमरन में सफलता कभी मिल ही नहीं सकती, चाहे कितनी मेहनत करनी है। बुद्धि का निश्चय ही गलत है तो मन अंदर टिकेगा कैसे? बुद्धि का मन है ना, बुद्धि मन की मालिक है, मैं मन का मालिक हूं, मेरा मन है, तो अंदर टिकेगा नहीं। ज्ञान जब तक मैं नहीं सीखता है, इसलिए शास्त्र बड़ी बारीकी से सीखे जाते हैं, बड़े शौक से, बड़ी उसकी आवश्यकता समझकर सीखे जाते हैं। इसलिए वो आगे कह रहे हैं, आपा मेटे सत शब्द कमावे, गुरु कृपा से परम पद पावे। यदि तू इस प्रकार से सोचता है कि करण कराए हार प्रभु है और अंदर तो प्रभु की याद करता है, कहते हैं आपा मेटे सत शब्द कमावे, तो करण करावन हार जब तेरे लिए प्रभु है, विचार करके देख ले तेरा अहंकार कहां जाएगा। मैं करता हूं, बड़े आराम से तू ये एक्सेप्ट कर लेगा, करता तो प्रभु है। सारी शक्ति को जब वो चला रहे हैं, मनुष्य तो चला ही नहीं रहा है, अपना घर तो कह दोगे वो चला रहा है, लेकिन सृष्टि को कोई मनुष्य चला रहा है क्या? ये बिना सृष्टि के आपकी देह रहेगी क्या? तो सारी सृष्टि को जो चलाने वाला ईश्वर है, और अहंकार मैं कर रहा हूं कि मैं चला रहा हूं, मैं सफल हो जाऊंगा संसार, तो कहते हैं कि आपा मेटे सत शब्द कमाए, सिमरन के द्वारा उस सत शब्द की कमाई कर जिसको ईश्वर कहते हैं। जब वो उसका अनुभव इस देह के अंदर होता है, वो उसी को होता है जो जिसका अहंकार छूट जाता है कि मैं करता हूं, वो प्रभु के अधीन होकर जीना सीख जाता है। इसीलिए कर्म तो फिर भी उसको करने पड़ते क्योंकि वो प्रारंभ के अधीन है, लेकिन तेरे अंदर कर्तापन नहीं रहता, प्रभु कारण करता तो ही, इसलिए उसका जीवन पहले से ही वो सादा कर लेता है। वो कहेगा मैं दौड़ संसार में क्यों लगाऊं सफलता के लिए? सफलता तो मन को अंदर ले जाने में, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर के अनुभव में है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है, कहते हैं गुरु कृपा से परम पद पा, वो व्यक्ति गुरु कृपा का अंदर अधिकारी है, क्योंकि गुरु अंदर है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे, आज्ञाकारी हो के तू घटका पाटेगा। गुरु जो मार्गदर्शन कर रहा है पांच नियम के रूप में, मैंने इसके अनुसार जब ये सारा ज्ञान मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूं और प्रभु का सिमरन दिल से करता हूं, जैसे संसार में सफलता के लिए दिल से मैं मेहनत करता हूं, उसी प्रकार प्रभु मार्ग में सफलता के लिए दिल से सिमरन करता हूं, उसको लक्ष्य बनाकर करता हूं, तो फिर मैं अंदर गुरु कृपा का अधिकारी हो जाता हूं। तो अंतर्यामी गुरु की कृपा जब होती है, तब मैं परम पद को प्राप्त कर लेता हूं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको अंतर्यामी ईश्वर के साथ एक होना कहते हैं, जिसको सह समाधि कहते हैं। ओम सत्य।